بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. جیسے کہ عرض کیا تھا کہ ہم رمضان میں قرآن مجید کے حوالے سے اس نشست کو یوٹیلائز کر رہے ہیں, اور غامدی صاحب سے ہم نے درخواست کی تھی کہ افطار کے بعد کچھ وقت ہمیں دیا کریں, اور ہم وہ لوگ جو قرآن مجید کو پڑھنا چاہتے ہیں اس مہینے میں, اس کتاب سے اپنا تعلق بحال کرنا چاہتے ہیں, وہ کون سے پہلو ہیں, وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو وہ پیش نظر رکھیں. تو گزشتہ دو نشستوں میں بہت تفصیل سے غامدی صاحب نے اس حوالے سے ہمیں ایجوکیٹ کیا تھا, اور یہ بتایا تھا کہ قرآن کس الہامی اور تاریخی پس منظر میں کھڑا ہوا ہے, اس کی زبان کس طریقے سے بات کرتی ہے, اور اس کا مرکزی مضمون یا تھیم کیا ہے. تو آج ہم اسی موضوع کو غامدی صاحب سے آگے بڑھاتے ہیں. غامدی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. امید ہے رمضان اچھا گزر رہا ہوگا آپ کا.
اللہ کا شکر.
ہاں صاحب, ہم نے گزشتہ نشست میں بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ قرآن کا مرکزی مضمون کیا ہے, وہ تھیم کیا ہے جو ہر جگہ پہ زیر بحث ہے. آج میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ صورتیں کیا چیز ہیں, یعنی یہ صورتوں میں وہ جو مرکزی مضمون ہے رسول اللہ کی سرگزشت انذار, ان کے مختلف مراحل کو, ایک ایک مرحلے کو صورت میں رکھ دیا گیا ہے. صورت میں تقسیم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, اور صورت اور پاروں میں کیا فرق ہوتا؟
پہلے پاروں کے بارے میں عرض کر دوں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ تقسیم تو تلاوت کرنے والوں نے بعد میں کی ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ لوگوں کا ہمارے ہاں معمول رہا ہے کہ مہینے میں قرآن ختم کرنا ہے, ہفتے میں قرآن ختم کرنا ہے, عشرے میں قرآن ختم کرنا ہے. تو اس مقصد کے لیے انہوں نے کم و بیش حروف گن کر یہ تقسیم کی ہوئی ہے.
اچھا,
اس کا قرآن مجید کی معنویت سے کوئی تعلق نہیں.
اچھا,
بلکہ میرے نزدیک تو اس تقسیم کا اظہار بھی اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے جس طرح سے عام طور پہ کیا جاتا ہے, اس لیے کہ لوگ اس سے قرآن مجید کوئی معنی خیز کلام ہے اس چیز کو فراموش کر بیٹھتے ہیں.
کیونکہ سورت چل رہی ہوتی ہے اور پارہ ختم ہو جاتا ہے.
سورت چل رہی ہوتی ہے, یعنی جملے کا آدھا حصہ ایک پارے میں اور آدھا حصہ ایک پارے میں ہوتا ہے. مبتدا ادھر رہ گیا, خبر ادھر چلی گئی. عطف ادھر رہ گیا, معطوف علیہ ادھر چلا گیا. تو یہ صورتحال ہے پاروں کی. یہ محض تلاوت کے لیے آپ نے 20 رکعت میں مثلا قرآن مجید ختم کرنا ہے, یا ایک پارہ پڑھنا ہے, یا آپ نے 30 دنوں میں قرآن مجید ختم کرنا ہے, تو ان چیزوں کا لحاظ کر کے یہ حروف گن کے تقسیم کر لی گئی ہے. اس کا کوئی تعلق قرآن مجید کے معنی سے نہیں ہے.
ٹھیک,
اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بنیادی وحدت ہے وہ سورہ ہے. یعنی اس طرح آپ سمجھیے کہ جیسے آپ ایک کتاب لکھتے ہیں تو اس میں آپ مختلف ابواب بناتے ہیں, یا آپ نے کوئی کلام تصنیف کیا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس میں 20 نظمیں ہیں, یا اس میں 50 غزلیں ہیں, یا اس میں اتنے ایکٹ کے اتنے ڈرامے ہیں. تو اس طرح کی جتنی چیزیں بھی ہیں ان میں ظاہر ہے کہ ایک تقسیم ہوتی ہے جس میں ایک بنیادی وحدت وجود میں آتی ہے. تو قرآن مجید میں وہ جو تقسیم ہے وہ سورہ ہے, یعنی بنیادی وحدت یہ ہے.
ٹھیک,
گویا صورتیں ہیں در حقیقت جن میں ایک مدعا کو پیش نظر رکھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خطبہ صادر ہوتا ہے, اگر ہم خطبے کی تعبیر اختیار کر لیں. یا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر قرآن مجید کو خطبات ہی کے زاویے سے دیکھا جائے تو ہر سورہ ایک جامع خطبہ ہے, جس کا ایک موضوع ہے, جس کا ایک ہدف ہے, جس کو سامنے رکھ کر یعنی ایک مرکزی مضمون کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ بات شروع کرتے ہیں. وہ بات کبھی باقاعدہ تمہید باندھ کر شروع کی جاتی ہے, کبھی اس کے بغیر ہی شروع ہو جاتی ہے, اور اس طرح پھر آہستہ آہستہ تدریجی طریقے سے مضمون آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر اس کا ایک باقاعدہ خاتمہ ہوتا ہے, سورہ ایک جگہ پہنچتی ہے, اس میں التفات کے بہت سے مواقع آتے ہیں. تو ایک بڑا ہی خوبصورت, نہایت منظم خطبہ ہے جس کو آپ سورہ کہہ سکتے ہیں.
ٹھیک. اچھا ہم سر, یہ بتائیے گا, جب ہم یہ کہتے ہیں, آپ نے پچھلے بھی بتایا تھا کہ 7 گروپس میں, یعنی صورتوں کے مجموعے کو, 114 صورتیں ہیں, ان کو 7 گروپس میں تقسیم کر دیا گیا ہے. اب جو ایک گروپ کا مرکزی مضمون ہے وہ سورہ میں کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے, یعنی وہ مضمون آگے بڑھ رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم عام طور پہ کتابوں میں جب کسی چیز کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں, اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, تو مضمون اجزاء میں یہاں ہے, پھر آگے بڑھتا ہے, پھر اس سے آگے بڑھتا ہے. تو اس گروپ کے اندر مضمون کیسے آگے بڑھتا ہے سورت کی تقسیم سے؟
بالکل اسی طرح سے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو پچھلی نشست میں بتایا تھا کہ جس طرح ہمارے ہاں باقاعدہ نثری کتابوں کی, کوئی تاریخ کی کتاب ہے, جغرافیہ کی کتاب ہے, کوئی فلسفہ کی کتاب ہے, اس پر قرآن کو قیاس نہیں کرنا چاہیے. یعنی یہ کلام ہے, تو तो उस कलाम की बुनियादी वहदत क्या है? सूरा। अब उन सूरतों को तरतीब देना है, यानी कुरान मजीद को जब आप एक किताब के तौर पर रखेंगे तो सूरतों को तरतीब देंगे, तो वो तरतीब अल्लाह ताला ने ये इख्तियार की है, अल्लाह ताला की दी हुई तरतीब है कि उन तमाम सूरतों को एक ख़ास तरीके पे दावत के मराहिल को सामने रख के 7 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। यानी 114 सूरतें हैं आपके पास, तो आपने उनमें से कुछ सूरतें ली और उनसे एक ग्रुप या एक बाब को वजूद पजीर कर दिया, कुछ सूरतें ली और उनसे दूसरे बाब को वजूद पजीर कर दिया। तो ये कोई अललटप नहीं हुआ मामला, बल्कि इनके अंदर नहायत खूबसूरत तरतीब है, और ये तरतीब फिर मजमून को तदरीजी तौर पर नुमायाँ करती है। यानी क्या मजमून है वो? वो मजमून है पैगंबर की सरगुज़श्ते इंज़ार के मराहिल। यानी बात जो है वो इंज़ार से शुरू हो गई, बात इंज़ार आम से शुरू हो गई, उसके बाद अगला मरहला कौन सा है? वो ज़ाहिर है कि इतमाम हुज्जत का मरहला है, उससे अगला मरहला हिजरत और बरात का मरहला है, फिर इकदाम का मरहला आ जाता है या तज़किया और तत्हीर का मरहला आ जाता है। तो रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या एक अल्लाह के रसूल की दावत जिन मराहिल से गुजरी है उनको सामने रख कर वो 7 अबवाब तरतीब दे दिए गए हैं। उस्ताद इमाम उसको ग्रुप से ताबीर कर रहे थे,
जी
या सुवर का मजमूआ, इमाम फराई की है ये ताबीर थी। मैंने सूरा का लफ्ज़ चूँकि पहले से मौजूद था कुरान मजीद में तो उसको बाब का नाम दे दिया है। चुनांचे मेरी तफसीर अल बयान में आप उसे अबवाब की सूरत में देखते हैं, पहला बाब, दूसरा बाब, तीसरा बाब। तो पहले बाब को आप देखें तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, मैं मिसाल के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ कि कैसे सूरतें तरतीब दी गई हैं।
जी
मसलन आप देखिए कि पहली सूरह क्या है? सूरह फातिहा। सूरह फातिहा में बेसते नबीवी की दुआ है। यानी
जी
यूँ समझ लीजिए, आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए कि ये पूरा आलम रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले बेताबी के साथ अल्लाह के सामने दस्तबदुआ है कि परवरदिगार तू इस कायनात का मालिक है, तू सरासर रहमत है, तेरी शफकत अबदी है, रोजे जजा का मालिक भी तू ही है, हम तेरे बंदे हैं, तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद चाहते हैं, सीधी राह कहाँ है?
वाह, यानी वो
यानी तेरे
पुकार रहे
रास्ते
हैं।
पर चलने का क्या तरीका है? क्यों ये सवाल पैदा हो गया? यानी दीन हिदायत वो तो तमाम अंबिया पेश करते रहे हैं। अल्लाह ताला ने जिस गिरोह को या जिस जमात को दुनिया भर की हिदायत के लिए मुंतखब किया था वो ज़ुर्रियत इब्राहिम की वो शाख है जिसको हम बनी इसराइल कहते हैं। एक लंबे अरसे तक, मैं कई बार ये अर्ज कर चुका हूँ कि एक ज़माना वो था कि जिसमें हर कौम के अंदर अल्लाह ताला के रसूल आते रहे और वो अपनी अपनी कौम को ना सिर्फ ये कि खुदा की हिदायत पहुंचाते थे बल्कि उन कौमों पर अल्लाह की हुज्जत पूरी कर देते थे और एक नौईयत की जजा व सजा इसी दुनिया में बरपा हो जाती थी। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने ये फैसला किया कि अब मैं इनकी ज़ुर्रियत को बाकायदा जमात की हैसियत से इस मनसब पर फायज़ करूँगा। नबूवत का लफ्ज़ अगर आप ना इख्तियार करना चाहें तो आप कहें कि गोया शहादत के मनसब पर फायज करूंगा, गवाही दें मेरी इस दुनिया के अंदर। ये जो बड़ा फैसला किया गया तो इसके लिए एक उम्मत को तैयार करना था, इसमें कमोबेश 500 साल लगे। उस 500 साल में भी सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद वो चीज़ जारी रही, यानी मुख्तलिफ कौमों में रसूल आते रहे। जब ये उम्मत तैयार हो गई तो फिर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की बेइज्जत हुई और फिर इनसे कहा गया कि अब आप फ़लस्तीन में आके आबाद हों, उस सरजमीन में अल्लाह की तौहीद का मरकज़ बनाएं और अल्लाह के दीन की गवाही दें। इनकी पूरी तारीख़ का नतीजा क्या निकला? यानी ये नहीं है कि उन्होंने ये खिदमत अंजाम नहीं दी, बहुत बड़े पैमाने पर अंजाम दी, दुनिया की तारीख़ को मुतासर किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमहलाल पैदा हुआ, खराबियाँ पैदा हुई और फिर वो नौबत आ गई कि जिसमें सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की बेइज्जती हुई, उसके मुकाबले में सरकशी तमर्रुद का इजहार हुआ, चुनाचे अल्लाह के गज़ब का निशाना बन गया। ऐलान कर दिया गया कि अब क़यामत तक मसीह अलैहिस्सलाम के मुनकरीन मगलूब होकर रहेंगे, लेकिन ख़ुद मसीह अलैहिस्सलाम के मुत्तबई, उनकी पैरवी करने वाले, उनके पीछे चलने वाले, उनके हवारी, जब वो कुछ ज़माने की करवटों के बाद अपनी दावत को ज़रा वसी करने में कामयाब हो गए तो सेंट पाल के अहतमाम में पूरे के पूरे दीनी का बिल्कुल हुलिया बिगड़ गया। तो अब एक गिरोह जो पहले ये जिम्मेदारी अंजाम दे रहा था वो अल्लाह के गजब का निशाना बन गया,
जी
दूसरा गिरोह जलालत और गुमराही में जा पड़ा। गुमराही भी मामूली नौईयत की नहीं थी, यानी सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का जसदी ज़हूर करार दे के बेटा कह दिया गया, इससे बड़ा शिर्क क्या हो सकता था। शरीयत दीन इसके नस्क का ऐलान कर दिया गया, वह सारा दीन ही जिसके लिए अल्लाह ताला ने इतने बड़े पैमाने के ऊपर एक कौम की तरबियत की थी वो लोगों के लिए बेमानी होकर रह गया, कफारे का अकीदा ईजाद कर लिया गया। तो जो जलालत या गुमराही की तीन बहुत बड़ी चीज़ें हो सकती थी वो वजूद में आ गई। उस मौके के ऊपर ये सूरह फातिहा जो है एक दुआ है कि परवरदिगार सीधी राह दिखा, लेकिन राह उनकी होनी चाहिए जिन पर तेरी नेमतें हुई, वो अल्लाह के पैगंबर, वो सिद्दीकीन, वो शुहदा, वो सालेहीन, उन लोगों की राह नहीं कि जिन पर तेरा गजब हुआ और जो इस तरह गुमराह है। तो गोया नसारा यहूद उस पूरी तारीख के पस मंजर में खड़ी हुई इंसानियत या खुदा का बंदा दुआ कर रहा है कि मुझे सीधी राह दिखा। अब यहां से गोया कुरान मजीद का ये दिबाचा भी बन गया
जी
और ये खुद इस बाब की पदा भी हो गई, इसके जवाब में कुरान नाजिल होना शुरू हो गया।
वाह, और ये वजह के नमाज में भी पढ़ते हैं
इसी वजह से आप अलामती तौर पर सूरह फातिहा में वो दुआ करते हैं और उसके बाद फौरन कुरान मजीद का कोई हिस्सा पढ़ते हैं, खा वो चंद आयात ही क्यों ना हो या छोटी से छोटी सूरह क्यों ना हो, ताकि इस बात की हमेशा याद दहानी होती रहे कि बंदे की तलब क्या है, सिरात मुस्तकीम। मुझे याद है कि एक मरतबा हम उस्ताद इमाम की खिदमत में हाजिर थे तो उन्होंने ये सवाल किया कि ये बताइए कि सबसे बड़ी दुआ कौन सी है, तो हमें तवज्जो नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने हमारे जवाबात पे तनकीद करने के बाद यह कि सबसे बड़ी दुआ है वो जो तुम रोज़ाना नमाज में मांगते हो,
वाह
एहदिनस सिरात मुस्तकीम, इससे बड़ी दुआ क्या हो सकती है। अरे रोटी भी देता है परवरदिगार, पानी भी देता है, इज्जत भी देता है, वकार भी देता है, इकतदार भी देता है, हुस्न भी देता है, इल्म भी देता है, लेकिन ये सब बिल्कुल बेकार हैं अगर आपको राह हिदायत नहीं मिली, अगर सिरात मुस्तकीम की खबर नहीं हुई। तो सिरात मुस्तकीम की जो दुआ है कुरान उसका जवाब है, और इस बाहमी ताल्लुक से ये वाजे कर दिया गया है कि अगर किसी और चीज़ को कुरान मजीद की जगह देने की कोशिश करोगे तो दीन की सारी बुनियादें उलट कर रख दोगे। अगर आप गौर करके देखें तो हमारी उम्मत का भी सबसे बड़ा इल्म और अमल में अलमिया क्या है,
कुरान को
कुरान
जो
मजीद की उस हैसियत को फरामोश कर देना। हैसियत का मतलब ये नहीं कि उसकी आप अजमत के गीत गाएं, उसको आप जुजदान में लपेट के रख दें, उसको आप चूमते रहें, ये चीज़ मतलूब नहीं है। क्या चीज़ मतलूब है, वही जिसके लिए कुरान नाजिल हुआ है, ले यहकुम बैन अन्नास फी मख्तलफू फी, यानी वो आपकी हर चीज़ पर हुकूमत करे, चुनाचे वो रिवायत पर हुकूमत करे, वो फिक पर हुकूमत करे, वो आपके इल्म कलाम पर हुकूमत करे, वो आपकी ताबीरात पर हुकूमत करे, वो फैसला कुन हैसियत रखे। तो दीन में सिरात मुस्तकीम पर रहना है तो कुरान मजीद को ये हैसियत देनी होगी। तो अब जब आप सूरह फातिहा में दुआ करते हैं तो अब क्या है, अब उसके बाद आपके सामने वो पूरी अकवाम आ जाती हैं, वो जिनको कहा था आपने अल मगजूब इलेहम अज़्ज़ालीन, वो कौन सी अकवाम है, वो अहले किताब है, यानी बनी इसराइल है, और उन्हीं बनी इसराइल के साथ नसारा है जो सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम के पैरों हैं। आप अगर आगे देखें तो एक नहायत खूबसूरत तरतीब के साथ इन पर इत्माम हुज्जत किया गया, यानी गोया सीधी राह की दावत लेके कुरान आ गया, और अब जो सामने खड़े हैं वो बनी इसराइल हैं, वो नसारा हैं, इन पर अल्लाह की हुज्जत तमाम करनी है। इन पर अल्लाह की हुज्जत तमाम करके गोया इनकी माजूली का ऐलान कर दिया गया है मानवी लिहाज से, और इनकी जगह एक नई उम्मत उठाई गई है और उस उम्मत से आखिरी मीसाक लिया गया है। तो ये पूरा जो बाब है ये फातिहा से शुरू होता है, मायदा पर खत्म हो
खत्म हो
जाता है।
जाता है जी।
तो आप अब देखें तो क्या चीज़ है, यानी बकरा में अहले किताब खास तौर पर यहूद पर अल्लाह की हुज्जत तमाम हुई है, अहले किताब ही पर हुज्जत का ये मज़मून आगे आले इमरान में भी है, लेकिन उसमें नसारा नुमायाँ होना शुरू हो गए हैं। फिर उसके बाद सूरह निसा है, उसमें भी इसी तरीके से आप आखिर तक देखें तो यही मज़मून एक तरह से एक तरतीब के साथ चला जा रहा है, लेकिन बकरा में भी, आले इमरान में भी, निसा में भी उसके साथ ही एक नई उम्मत पैदा हुई है, उम्मत मुस्लिमा, जिसकी दुआ की थी सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान लाने के बाद अब दुनिया में اللہ کے دین کی شہادت کے لیے کھڑی کر دی گئی ہے. تو اعلان کیا گیا ہے سورہ بقرہ میں کہ یہ امت اب کھڑی ہو گئی ہے, اس کو اب قیامت تک کے لیے اللہ کے دین کی گواہی دینی ہے. گویا بنی اسرائیل نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا, اس کا تجزیہ کر دیا گیا, حجت تمام کر دی گئی, انہیں بھی دعوت دی گئی ہے کہ تم اس امت کا حصہ بنو اب, اور پھر سب کے سب مل کر اللہ کے دین کی گواہی دو. اور اللہ کے دین کی گواہی دینے کے لیے جو امت وجود میں آئی ہے, اس امت کو اب کیا چیز اپنانی ہے, کن چیزوں سے بچنا ہے, اس کو کون سی شریعت دی گئی ہے, اس شریعت کے احکام کیا ہیں جس کا اس کو نمونہ بن کے رہنا ہے, یہ پھر ترتیب سے آتے ہیں. اور پھر سورہ مائدہ میں خدا کا آخری عہد نامہ لیا جاتا ہے اس سے. تو اب دیکھیں یہ کتنی خوبصورت ترتیب ہے جس کے ساتھ یہ سورتیں ہیں. ایسے ہی ایک ایک باب کو ترتیب دیا گیا ہے, یعنی پہلا باب فاتحہ سے شروع ہوا, مائدہ پر ختم ہو گیا, دوسرا اسی طرح انعام سے شروع ہوا, توبہ پر ختم ہو گیا. ان ابواب میں ایک خاص ترتیب سے مضمون اپنے کمال کو پہنچتا ہے. یعنی آپ ایک جگہ سے شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ, اس کے بعد اگلا مرحلہ, یہاں تک کہ وہ خاتمے کو پہنچ جاتا ہے.
ٹھیک,
تو اس طرح کا نظم ہے قرآن مجید کے ابواب میں. انہی کا ذکر کیا ہے قرآن نے خود کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, کہ یہ قرآن عظیم کیا ہے, یہ اصل میں سبع مثانی ہے. اس میں سات ابواب ہیں جس میں تقسیم کر دیا گیا ہے, اور ہر باب میں صورتیں جوڑا جوڑا ہیں. یہ پھر ایک اور لطافت پیدا کی گئی ہے, یعنی صورتوں کو پیر بنا دیا گیا ہے. اس کو اگر آپ سادگی سے دیکھیں, ظاہر عام آدمی اس طرح اس کے اندر اتر کر نہیں دیکھ پاتا, تو جیسے فلک اور ناس ہے. یعنی اس میں دیکھیے نا کہ مضمون کے لحاظ سے بھی ایک ہی طرح کی صورت ہے, اسلوب بھی ایک ہی طرح کا ہے, جو فارم ہے, سٹرکچر ہے, وہ بھی ایک ہی طرح کا ہے. اسی طرح مثال کے طور پر سورہ الدحا ہے, اسی طرح سورہ علم نشرہ ہے. تو اس طرح سے یہ سب صورتیں قرآن مجید میں پیئرز کی صورت میں ہیں. چند صورتیں اس سے مستثنی ہیں جو یا کبھی تمہید بن رہی ہوتی ہیں یا کبھی خاتمہ بن رہی ہوتی.
ٹھیک, ہم سبھی بہت ہی دلچسپ پہلو ہے, اور چونکہ یہ امتیاز ہے ایک طریقے سے مدرسہ فراہی کا ہی کہ انہوں نے اس مانوی ربط کو دریافت کیا. اس میں ایک سوال عام طور پہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب قرآن مجید نے یہ کہا کہ سبب من المثانی والقرآن العظیم, تو اب وہ سات گروپس کون سے ہیں؟ وہ قرآن نے تو کہیں ڈسٹنگ کر کے نہیں بتایا کہ بھئی یہاں سے یہاں تک ایک گروپ ہے, وہاں سے آگے دوسرا گروپ ہے. تو دو باتیں میں پوچھنا چاہتا ہوں اس زمن میں. پہلی یہ کہ جو ترتیب دریافت کی ہے اس مکتبہ فکر نے, وہ ظاہری بات ہے کوئی منصوص ترتیب تو نہیں, نقطہ نظر تو نہیں ہے کہ اجتہادی بصیرت سے وہ اس نتیجے تک پہنچیں, اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا پہنچے کیسے ہیں کہ کیسے بالکل دو دو چار کی طرح بتا دیا کہ یہاں یہ باب ختم ہو گیا, وہاں وہ باب شروع ہو گیا؟
بدی ہے, یعنی آپ نے کہا اجتہادی, بدی ہے. جیسے ہی آپ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے نا کہ اگر ایک مضمون کی یہاں سے ابتدا ہوئی ہے اور وہ خاتمے پر پہنچ کے پھر شروع ہو رہا ہے, تو واضح ہو گیا کہ وہ یہاں پہنچ گیا ہے خاتمے کو. پھر اس میں ایک اور چیز ہے جو بالکل علامت بن گئی ہے ایک عام آدمی کے لیے بھی, وہ یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دو مراحل سے گزری ہے. چونکہ آپ کی دعوت کے ایک تو وہ مراحل ہے نا کہ جو مدعا کے لحاظ سے ہیں, انذار, انذار عام, اسی طرح اتمام حجت, ہجرت و برات, تزکیہ و تطہیر, اقدام. یعنی ایک تو یہ اس کی معنوی ترتیب ہے, دوسرا یہ کہ مقام کے لحاظ سے وہ مکی اور مدنی ہے.
جی,
یعنی ایک زمانہ مکے میں گزرا ہے, ایک زمانہ مدینہ میں گزرا ہے. تو اب اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوا کہ یہ چونکہ یہ ترتیب, یہ معنوی ترتیب بھی ایسے ہی آگے بڑھے گی نا, مکے سے شروع ہوگی اور مدینہ میں جا کے پایہ تکمیل کو پہنچے گی. تو جب مکے اور مدینہ کے درمیان یہ رب پیدا ہوا تو صورتوں میں بھی یہ چیز نمایاں ہو گئی. یعنی آپ ہر باب کو دیکھیں, وہ ایک مکی, ایک یا ایک سے زیادہ مکی صورتوں سے شروع ہوگا اور ایک یا ایک سے زیادہ مدنی صورتوں پر ختم ہو جائے گا. اب مدنی صورتیں, پھر اس کے بعد پھر مکی سورہ آ جاتی, پھر مدنی صورتیں, پھر مکی سورہ آ جاتی ہے, تو وہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں. تو یہ بالکل بدی ہے, یعنی ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک گھر میں داخل ہونے کے بعد کسی آدمی کو تردد نہیں ہوتا کہ ڈرائنگ روم کون سا ہے اور بیڈ روم کون سا ہے, بالکل واضح ہو جاتا.
تو ہم سے پھر کیا وجہ ہوئی کہ مطلب اگر اتنی واضح ترتیب تھی تو سبب من المثانی سے اول تو یہ مراد ہی امت کے جو نمایاں مکاتب فکر ہیں انہوں نے کبھی نہیں دی, اور انہوں نے جو اس کی تطبیق کی, بلکہ ایک چونکہ زیر بحث آئی گئی ہے وہ روایت, اس پہ بھی اپنا نقطہ نظر آپ بتا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو یہ جو سبب مثانی جس سے مکتب فراہی گروپس کی نوعیت تعبیر کرتا ہے, وہ تو سورہ فاتحہ کو قرار دیا تھا کہ وہ ہے سبب مثانی اصل میں. تو इतनी बदीही, इतनी वाज़ह चीज़ थी, तो क्या वजह हुई कि ये पूरी उम्मत से ओझल रही इतने
नहीं,
अरसे से?
रिसालत बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल करार नहीं दिया, वो एक और बात है जो आपने फरमाई। यानी आपने ये बताया कि ये जो सूरह फातिहा है
जी
यही पूरा कुरान भी है, यही सब मसानी भी है, तो आपने सूरह फातिहा को पूरा कुरान भी करार दिया है। उस हदीस को पढ़े पूरी,
जी
हे सबल मसानी व हे कुरान नजीम, यानी ये सूरह अपने मजमून के लिहाज से या अपने मजामीन के लिहाज से ये गोया एक जामे तरीन ताबीर है, जिसमें तुम देखना चाहो जिसकी आईने में, तो पूरे कुरान को देख लो और कुरान मजीद के सातों अबवाब को देख
गोया
लो,
सब मसानी और कुरान दोनों को एक साथ रख
तो
दिया।
सबे मसानी वल कुरान लजीम एक ही जगह पे रखा है हुजूर ने। अगर आप सबे मसानी से मुराद फातिहा लेते हैं तो फिर आप कुरान अजीम से मुराद भी फातिहा उसी मानी में लें। अगर वहां आयतें गिन रहे हैं तो यहां फिर 6,000 से ज्यादा आयात ही गिने। ये यूं नहीं है, बल्कि ये बताया गया है, जैसे मिसाल के तौर पर हुजूर ने फरमाया कि ये जो सूरह इखलास है ये सुलसुल कुरान है, कुरान का एक तिहाई है। तो ये क्या मतलब है? इसका मतलब मजमून के लिहाज से अगर आप देखें तो कुरान मजीद के बुनियादी मजामीन क्या हैं? तीन, तौहीद, आखरत, नबूवत। तो इसके अंदर तौहीद बयान हुई है, तो एक सुलस हो गया ना। तो
जी
ये असल में एक मानवी चीज है, लोगों ने उसको जाहिर समझ के सूरह की आयतें गिनना शुरू कर दी, और फिर उसके बाद एक के बाद दूसरी गलती। यानी मसानी का लफ्ज ये दोहराने के मानी में आता ही नहीं, ये मसना की जमा है, इसका मतलब है दो दो करके होना,
पेयर्स जोड़े।
पेयर्स जोड़े, यानी तमाम है सूरतें। तो ये चीज है जिसको बयान किया गया, सात बाब हैं कुरान के और तमाम सूरतें सवाए चंद मुस्तस्नियात के तमाम हैं, तमाम यानी पेयर हैं।
जुड़वा है यानी जुड़ी हुई हैं एक दूसरे। अच्छा हम सब इस पे आखिरी सवाल करते हैं, फिर हमारा वक्त यहाँ ख़त्म हो रहा है। जब आप ये कहते हैं कि ये जुड़ी हुई हैं, मैं ये देख रहा था कि मसलन आपने बकरा और आले इमरान को दोनों को कहा कि ये तमाम सूरतें हैं, तो आपने लिखा है कि पहली सूरह में यहूद और दूसरी में यहूद के साथ बिलखसूस नसारा पर इतमाम हुज्जत के बाद बनी इस्माइल में से एक नई उम्मत, उम्मत मुस्लिमा की तासीस का ऐलान किया गया। लोग आम तौर पर जब आप ये नुक्ता नज़र बयान करते हैं तो वो असल में एक मंतिकी मुनासबत या रब्त या तरतीब का कैनवस लेके ढूंढते हैं कि सूरत में यहाँ अगर ये चीज़ है तो वहाँ भी ये चीज़ होनी चाहिए। जब हम सूरह को पढ़ते हैं तो उसमें मजमून बीच में कहीं थोड़ा सा आगे भी निकल जाता है, कहीं पीछे भी आ जाता है। तो जब हम ये कहते हैं तमाम हैं और इनके दरम्यान एक बात उठी है, लेकिन सूरह में और भी बातें जेरे बहस आ रही होती है ना, तो ये मंतिकी तौर पर तमाम नहीं होती।
नहीं, देखिए इसका ताल्लुक तो इससे है कि किस पहलू से उनको आपने तमाम करार दिया है, यानी दोनों को मिलाया है। कभी मैंने जैसे कि अर्ज किया बिल्कुल मुश्तरक मजमून होता है, जैसे फलक और नास में, यानी अल्लाह ताला से तावुस, अल्लाह की पनाह मांगना। और जाहिर है कि जब पनाह मांगते हैं आप तो अल्लाह की सिफात के हवाले से मांगते हैं, उन चीज़ों का जिक्र करते हैं जिनसे पनाह मांगते हैं। तो आप देखें कि उसमें भी कुछ चीज़ों से पनाह मांगी गई है अल्लाह की बात सिफात का हवाला देकर, और सूरह नास में भी। दोनों सूरतें मजमून के लिहाज से एक, अगर आप स्ट्रक्चर को देखें अच्छा ज़ौक हो, यानी उनकी जो फॉर्म है वो मिलती जुलती है, आउज़ बिरब्बिल फलक मिन शर्र मा खलक, आउज़ बिरब्बिन नास
मलिकिन नास
मालिक
में
नास इलाही नास मिन
कवाफी
शर्र
में मिलते जुलते
वसवास
हैं।
कवाफी, इस तरह की चीज़ें, तो वो एक फॉर्म के लिहाज से भी मिलती जुलती होती हैं। और जो बड़ी सूरतें हैं उनमें यह है कि जो उसका मरकजी मजमून है वो असल में एक खास तरह का रब पैदा कर लेता है, जैसे उनके दुनिया के साथ आखरत, जैसे सुबह के साथ शाम, जैसे रात के साथ दिन, जैसे सूरज के साथ चांद। तो जब हम ये पेयर्स बनाते हैं तो ऐसे ही हम बाज़ औक़ात तसव्वुरात के पेयर बनाते हैं, गम और खुशी मिसाल के तौर पर। तो यही सूरत हाल रही है, इन पेयर्स में भी काम कर रही होती है। यानी सूरह बकरा जो है वो यहूद पर इत्माम हुज्जत कर रही है, अहले किताब पर इत्माम हुज्जत का यही मजमून आले इमरान में भी है। इसमें अहले किताब में से यहूद ही असलन मुखातब है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता नसारा भी नुमाया होना शुरू हो गए हैं, या नसारा से मुतल्लिक चीज़ें ज़ेरे बहस आने लग गई। सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम कैसे पैदा हुए, उनका मामला क्या हुआ, तो जाहिर है कि एक बिल्कुल मजमून के दोनों गिरोह जो हैं वो मुखातब हो गए हैं। इधर भी एक उम्मत है जिसकी तासीस हुई है, ऐलान किया गया कजा ले का जालना को उम्मतम वसतन ले तो कौन शहदा नास, उधर भी एक उम्मत की तासीस हुई है, कुन तुम खैरा उम्मत उखरजत नास। और फिर उस उम्मत को यहाँ पर शरीयत से मुतल्लिक हिदायत दी गई हैं, वहां अगर आप देखें तो उस वक्त उस उम्मत का जो हरावल है वो सहाबाए कराम है, सहाबाए कराम की तथहीर और तज़किए का एहतमाम किया गया है। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं। और जो नसा और मायदा है वो तो हैरान कुन तरीके से यानी एक दूसरे की तवाम होती हैं।
जी
दोनों में असल खिताब का रुख हो जाता है मुसलमानों की तरफ, यानी अब जो नई उम्मत बनी है उसको शरीयत दी जा रही है, उससे अहद लिया जा रहा है। उस ज़ैल में ज़ाहिर है कि अहले किताब भी और यहूद व नसारा भी ज़ेरे बहस है। बिलखसूस नसारा का मामला ज़्यादा वज़ाहत के साथ सूरा के आखिर में आता है। ऐसी सूरत हाल आप मायदा में देखते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये चल रही हैं। और फिर उसमें एक दिलचस्प चीज़ ये है कि दोनों सूरतें एक ख़ास जगह पर जाके ख़त्म हो जाती हैं।
जी
आखिर में जो मबाइस थे उनसे मतलब सवालों का जवाब दिया गया है। तो गोया एक सवालात व जवाबात का ज़मीमा यहाँ है नसा के बाद, बिल्कुल इसी तरह एक सवालात व जवाबात का ज़मीमा मायदा के बाद है। अगर आप मेरी तफसीर अल बयान में देखेंगे तो वहाँ इनको बिल्कुल अलग अलग करके वाज़े कर दिया गया है, यानी किस तरीके से ये दोनों सूरतें तमाम होती हैं। तो ये मतलब है इसका।
ठीक हम सब, वक्त हमारा यहाँ ख़त्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में हम मज़ीद कुछ सूरतों को समझने की कोशिश करेंगे कि वो अबवाब में जो एक मानवी मफहूम मौजूद है वो सूरत में कैसे नुमाया होता है। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी आपसे।